प्यारे छात्रों, मैं हरिशंकर त्रिपाठी AECS 2 मुंबई। आज कक्षा 8 के निर्धारित वसंत भाग 3 के पाठ 10 के रूप में कहानी कामचोर का अध्ययन करेंगे, जिसका दूसरा भाग आज प्रस्तुत है आपके सामने। इस पाठ में लेखिका ने प्रथम भाग में जहां अमीर घर के शरारती बच्चों का वर्णन किया है, जिन्हें बचपन से काम की कोई आदत नहीं डाली गई थी, भाग दो में उन्हीं बच्चों को अचानक याद आया कि पौधों में पानी देने का काम भी बाकी है, तो वे घर के सारे बर्तन, बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने आदि लेकर वे नल की ओर दौड़े। पहले हम के स्वर में चीखते भागते कुछ तो कटोरे गिलास लेकर ही आगे आए और एक दूसरे को धक्का देने लगे। और पहले उन्होंने कुहनियां और अंत में बर्तनों से मारपीट करने लगे। और इस भाग में ये बच्चे धीरे धीरे कीचड़ से लथपथ हो गए। अब नौकरों द्वारा 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से उन्हें नहलवाया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम भाग में बच्चों ने जो गलतियाँ की थी, माता पिता ने उस पर ध्यान खास नहीं दिया, तो अगले काम पर बच्चे जुट गए। और कहानी के अगले भाग में पृष्ठ संख्या 56 में पहले वे बच्चे दरी पर झाड़ू देने से पहले उन्हें याद आया कि जरा सा पानी छिड़क लेते तो अच्छा होता। तो असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, बस यही ख्याल माने विचार आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी दरी, धूल से भरी पड़ी थी। जब पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई, यानी आसपास जो धूल था सब कीचड़ में तब्दील हो गया। अब सब आंगन में निकाले गए और तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब पेड़ों को पानी देने के लिए बर्तन चाहिए। वे बर्तन क्या हैं? बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां सब लूट ली गईं। जिन्हें ये चीज़ें नहीं मिली वे डोंगे और गिलास लेकर ही पानी के लिए टूट पड़े। और सब चाहते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों में पानी डाल। तो इस तरह अब सब लोग नल पर टूट पड़े। नल क्या होता है? जहाँ से पानी भरा जाता है। यहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद भी पानी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास का अर्थ है दबा दबा कर रखना, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे, पहले तो धक्के चले, फिर कुहनिया और फिर बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। कुमुक माने सेना, यानी बड़े लोगों की फौज आ गई। फौज के सामने हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई, यानी फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई, यानी जब बड़ों को आते देखा तो बच्चे बर्तन वहीं फेंक कर भाग खड़े हुए। इस ढींगा मुस्ती में कुछ बच्चे भीषण में लथपथ हो गए। लथपथ हो जाने का मतलब पूरी तरह से तर बतर हो गए। और जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या कम नहीं थी, यानी घर में जितने नौकर थे एक साथ सभी बच्चों को नहलाने के लिए उनकी संख्या कम पड़ गई। तो पास के नौकर आए, यानी पास पड़ोस के नौकरों को भी बुलाया गया। चार आना प्रति पैसे के प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। ये चार आना क्या होता है पता है? ये रुपए का एक चौथा हिस्सा होता है, यानी एक रुपए में 16 आने होते हैं, 16 आने का आधा 8 आने होता है और 8 आने का आधा 4 आने यानी 25 पैसे। अब आज के समय में तो ये चलता नहीं, लेकिन उस समय ये चार आना भी काफ़ी काम का था। जिस दौर में ये कहानी लिखी गई उसकी कीमत थी आज के कम से कम 10-20 रुपए के बराबर उसकी कीमत थी। तो प्रति बच्चा चार आना यानी आज से 20 रुपए के बराबर है नहलाने के लिए नौकरों को देना पड़ा। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है, ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, तो कम से कम मुर्गियों को ही बंद कर दें। यहाँ हम लोग किसके लिए आया है पता है? यहाँ हम लोग उन बच्चों के लिए आया है। बच्चों ने स्वीकार कर लिया, मन ही मन मान लिया कि सचमुच माने वास्तव में वे सफाई का काम और पेड़ की देखभाल का काम नहीं कर सकते। इसमें बच्चे अपने को फेल मान लिए, लेकिन मुर्गियों को तो डड़बे में बंद कर ही सकते हैं। शाम का समय था, बस शाम से ही जो बांस की छड़ी हाथ में पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी, यानी बच्चे मुर्गियों के पीछे बांस की छड़ी लेकर उनको दड़बे की ओर हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे ये बोलते हुए यानी मुर्गियां दड़बे की ओर चलें। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। हमारे विरुद्ध माने बच्चों को ऐसा लगा कि मुर्गियों उनकी बातें नहीं समझ रहे हैं और विरोध में काम कर रहे हैं। वो उनको दाहिने ले जाते तो मुर्गियां बाएं भागने लगती। तो इस तरह बच्चों को लगा कि मुर्गियां उनके विरुद्ध हो चुकी हैं। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगे। ये ऊट पटांग का अर्थ क्या है? अव्यवस्थित होकर, नियंत्रणहीन होकर इधर उधर वो मुर्गियां भागने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गरजने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई हैं। कामदानी दुपट्टा का अर्थ है हाथ से कढ़ाई किया हुआ दुपट्टा जो सिर ढकने के काम आता है। उसमें सब खीर जा गिरी है और कुछ खीर तो जो दीदी नहा चुकी थी सिर धुलकर उसके सिर तक में लग गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा। पानदान जानते हैं क्या होता है? जो पान बनाने के लिए बर्तन पिटारा होता है उसमें पान कत्था चूना और पान लगाने की जो सामग्री होती है रखा रहता है। तो कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर ऐसे कपट्टा मारा मुर्गे ने कि कत्थे चूने के साथ उसका पंजा लगा और वो अम्मा की दूध सी सफ़ेद चादर पर छापे मारता हुआ निशान बनाता हुआ आगे निकल गया। तो छापा कौन मार दिया? ये छापा मारने वाला कौन था पता है? मुर्गा था। और ये मुर्गा आगे निकल गया। इस तरह ये मुर्गे ने क्या गंदा कर दिया पता है? मुर्गे ने माँ की दूध जैसी चादर पर छापा लगा दिया। इस तरह आगे मुर्गियों ने क्या हाल किया? एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में तेजी से फिसली। मोरी का अर्थ क्या है? पतली नाली। और इस तरह तेजी से तितली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर जा पड़ी और जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी तो कीचड़ लग गया। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल ऊंट की तरह चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल ऊंट का क्या अर्थ होता है? ऐसा ऊंट जो नियंत्रण के बाहर हो गया हो। तो ऐसी मुर्गियां इधर उधर उड़ रही थी, भाग रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई हैं उन्हें लगे हाथों दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर जो उनकी तरफ झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्तम पस्तम, सूप जानते हैं क्या होता है? सूप अनाज साफ करने का एक बर्तन होता है, वो इससे बनता है, बांस की खपच्चियों से भी बनता है और घास का भी बनता है। तो इस सूप में दाना खिलाने के लिए रखा था। अब उसे देखा तो उन्हें भूख लगी थी और उस पर टूट पड़ी। लष्टम पष्टम का अर्थ होता है जल्दी जल्दी। तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ की क्या चाल होती है? एक भेड़ जिधर जाती है बाकी भेड़ें आंखें बंद कर उसी के पीछे लग जाती हैं। वो दाएं बाएं अगल बगल कोई खतरा नहीं देखती हैं। तो कहा जाता है ना, एक भेड़ अगर अगली वाली कुएं में कूदती है तो पीछे वाली भेड़ों को कोई बताता नहीं, वो भी कूदती चली जाती है। भेड़ चाल इसलिए मशहूर है, बिना सोचे विचारे भेड़ें एक दूसरे के पीछे लग जाती हैं। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर थी, पलंगों पर पलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा, सलमा, सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती हुई मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। ये मेंगना क्या होता है? मेंगना उन भेड़ों का मल होता है जो छोटे छोटे गोली के आकार का होता है और इस तरह वे आगे बढ़ती चली गईं। तो मेंगनों का छिड़काव करती हुई बढ़ गई। कौन बढ़ गई? ये भेड़े बढ़ गई आगे। मेंगन माने एक तरह से गंदगी का आलम बिखर गया। फिर जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई है। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघते हमला करती हुई चली गई। यानी सूप लेकर बचने की कोशिश की जाती रही और वो भेड़े उनके पीछे शिकारी कुत्तों की तरह हमला करती रही। अजन्मा एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की शैर कर रही थी। दुपट्टे से उलझती हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान उठ खड़ी हुई उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा, बस ऐसा लगता है जैसे कोई रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। आप ही वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंकना ये जल्दी जल्दी खा लेना, ये एक प्रकार से क्या है पता है? जल्दी जल्दी झोंकना, जल्दी जल्दी खा लेना, पेट की कड़ाही में झोंकना, ये एक तरह से क्या है? ये एक मुहावरा है। इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं जो इस प्रकार हैं। इस तरह इस पाठ में कुछ मुहावरे भी प्रयोग किए गए हैं, जैसे बेनकेल का ऊंट होना, अर्थात अनियंत्रित होकर बिना किसी नियंत्रण के इधर उधर भागना, राजी होना अर्थात मान जाना, भेड़ चाल होना अर्थात बिना सोचे समझे अनुसरण करना, एक के पीछे एक भागते जाना, पेट की कड़ाही में झोंकना अर्थात जल्दी जल्दी खा लेना, बमबार का अर्थ है बम गिराने वाले। इस प्रकार भाग दो की कहानी यहीं तक। धन्यवाद।